तत्वार्थ सूत्र लेक्चर नंबर 16 ओम नमः सिद्धे तत्वार सूत्र नामक जो शास्त्र आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है और उसके ऊपर रामजी भाई जी ने टीका रचकर मोक्ष शास्त्र लिखा है, उसके हम 9वें और 10वें सूत्र के अंत तक आए हैं और यहाँ हम पेज नंबर 46 तक आए थे। यहाँ हमारे पास सर्वार्थ सिद्धि वचनिका नाम का एक शास्त्र जो तत्वार सूत्र के ऊपर टीका है वह है, उसको हम देखेंगे।
इसमें से कुछ थोड़ा अंश मैं बताती हूँ। यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है कि जीवादि का अधिगम किससे होता है, तो प्रमाण और नय से। हमने सूत्र पढ़ा ना, तो कहते हैं तो प्रमाण और नय का अधिगम किससे होता है। क्या प्रश्न पूछा? जीवादि जो कोई भी हमको कोई विषय सीखना है तो प्रमाण और नय के द्वारा उसका अभ्यास या उसको उसका ज्ञान होता है, तो जो प्रमाण और नय का ज्ञान किससे होता है? जो अन्य प्रमाण नय के द्वारा वो करते तो अनवस्था दूषण हो जाएगा, फिर उसका कौन करेगा, फिर उसका किससे होगा, फिर उसका यानी इसे लंबी श्रृंखला चलेगी, तो कहते वो अनवस्था दोष आएगा उसमें। और स्वयं अपने से ही होता है, आप ही करिए तो सर्व ही पदार्थ का आप ही थे होगा, फिर प्रमाण नय से होने की क्या जरूरत। प्रश्न तो ऐसा पूछा गया, तो प्रमाण नय तो निष्फल ठहरे, अपने आप ही अगर ज्ञान होता है तो प्रमाण और नय से क्यों होता है? अपने आप से जब होना है तब हो जाएगा। उसका उत्तर, प्रमाण नय का अधिगम अभ्यास अपेक्षा तो आप ही थे कहना, यानी वो प्रमाण नय का हम जो आगम के द्वारा हमें प्रमाण क्या है और नय क्या है इसका पता चलता है, उस अपेक्षा तो स्वयं को ही होता है उसका ज्ञान। और बिना अभ्यास अपेक्षा परते कहा है, इसलिए दोष नहीं है। यानी जिसका अभ्यास नहीं है तो परसे यानी वो तो उद्देश्य वगैरह हो जाता है। दूसरी एक बात यहाँ बता रहे हैं, अभी बहुत चर्चा है उसको हम छोड़ देते हैं। अधिगम कहाँ है वो भी ज्ञानात्मक और शब्दात्मक ऐसे दो प्रकार के, और ज्ञानात्मक है तो 5 प्रकार के ज्ञान है। हमने अभी देखे हमें केवल ज्ञान, वो तो आगे इन्हें आगे के सूत्र में कहे। और शब्दात्मक है वो विधि निषेध रूप है, विधि और निषेध समझते विधि यानी स्टेटमेंट करना, यानी उसको अस्ति नास्ति कहेंगे विधि और निषेध,
एफर्मेटिव और नेगेटिव,
यानी वो तो विधि निषेध है। तो कोई भी शब्द को प्रश्न के वस्ते विधि विषय ही प्रवर्त है, जैसे सभी वस्तुएं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व स्वरूप ही है, तथा कोई शब्द निषेध रूप से प्रवर्त है। यानी समस्त वस्तु पर द्रव्य क्षेत्र का भाव से नास्तिक विशेष, इसको कहेंगे विधि और निषेध, इसके अस्थि और नास्तिक बताते विधि और निषेध। और कोई दोनों रूप है यानी सभी वस्तुएं अपने से तो अस्थि रूप है पर से नास्तिक रूप है, ये दोनों आ गए इसमें। तो उसमें तो अवक्त वगैरह सभी साथ बंधे हुए, तो जो हमें पता है वो अस्थि नास्ति और वक्तव्य और उसके संयोग, ये सब बता दिए इसमें। और फिर अन्य अन्य मत क्या मानते हैं उसकी बात भी यहाँ बता दिया। एक और यहाँ बताया कि प्रमाण वाक्य और नए वाक्य, प्रमाण तो पूरे को बताता है उसको सकलादेशी कहते हैं। अभी ये जो कुछ न्याय के शब्द है फिर थोड़े थोड़े हम परिचय करेंगे उससे, उसके डिटेल में तो नहीं पाएंगे। सकलादेशी ने पूरी वस्तु को बता दिया, और जो नए वाक्य होते नए होते वो कहते हैं विकलादेशी होते, विकल एंड पार्ट, एक देश, यानी सकलादेश है वो प्रमाण के अधीन और विकलादेश है वो नए के अधीन। अभी अभेद उपचार वगैरह, ये भेद उपचार, ये जो विसागर महाराज जी ने चार्ट बनाए वो सब इसके उसकी चर्चा है बहुत, अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम। मैंने ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में और बहुत ही उसके ये प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी की बात आई थी अपने, दोनों आती है ना, प्रमाण में भी सप्तभंगी लगती है और नए में भी। अभी उसके बाद वो निर्देश स्वामी को हमने देखे थे, अब उसमें उन्होंने सभी में वो घटित किए हैं। मैंने सम्य दर्शन किसके होता है ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। देखो इसको मैं जरा पढ़ती हूँ, निर्देश स्वामित्व वगैरह जो है ना उसके बारे में सूत्र क्या है, निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधान का, ये हमने छह भाग देखे थे कौन कौन से होते हैं। तो फिर ये छह अनुयोग कहा इसको, इनके द्वारा भी सम्य दर्शन आदि तथा जीव आदि पदार्थों का अधिगम मैंने ज्ञान हो जाता। निर्देश में तो उसका स्वरूप का कथन होता है, स्वामित्व में अधिपति बना यानी किसके होता है उसको अधिपति कहेंगे, साधन उसके उत्पत्ति के कारण को कहते हैं, अधिकरण ने अधिष्ठान उसका आधार, स्थिति काल का प्रमाण और विधान उसके प्रकार कितने हैं उसको बताएंगे। मैंने इनके अधिगम मैंने इनके जानने का उपाय तो पहले बताया था, प्रमाण और नए से जाना जाता है, और जो संक्षेप में बताया विस्तार से बताना है तो ये सब छह उपाय बताए उसे। मैंने वो कौन कौन से प्रश्न है कि वस्तु क्या है, प्रश्न कौन से, वस्तु क्या है यानी स्वरूप निर्देश आया, छह प्रश्नों के उत्तर में ये निर्देश स्वामित्व वगैरह आया। तो वस्तु क्या है नहीं, वस्तु का स्वरूप उसकी परिभाषा बताएंगे, कौन के है नहीं किसके है यानी स्वामित्व है, काहे करी है यानी साधन क्या है उसका, कौन विषय है अधिकरण यानी किसमें है विषय ने किसमें है, कितने कितने काल है यानी उसकी स्थिति हुई, और कै प्रकार है कितने प्रकार, प्रश्न में ही ये छह आ गए यानी वस्तु क्या है किसके है किसके द्वारा है किसमें है कितने काल है और किस प्रकार, इनके उत्तर ही निर्देशाधिक है। अब कहते हैं सम्य दर्शन क्या है, सम्य दर्शन पर ये घटित करेंगे। तो सम्य दर्शन क्या है, तो तत्वा श्रद्धान है वो सम्य दर्शन, ये निर्देश हुआ, ये हमने पढ़ा लिखा। अब कहते हैं अथवा उसके नाम स्थापना द्रव्य भाव कहने वो निर्देश होता है। सम्य दर्शन कौन कहे, स्वामी को पूछा ना, तो कहते हैं सामान्य कहे तो जीव कहे सब, और विशेष से कहने के लिए उन्होंने पूरे सभी मार्गणा वगैरह आया, तो गति की अपेक्षा चारों गति वालों को थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। विशेष कहना है तो गति अनुवाद से नरक गति में सभी पृथ्वियों में जीवों के पर्याप्त के ही होता है और औक्षमिक और क्षारक्षमिक होता है, यहाँ तक उन्होंने बताया। पहली पृथ्वी में पर्याप्त में भी अपर्याप्त, अपर्याप्त नहीं वहाँ जो जन्म लिया ना निवृत्ति अपर्याप्त पश्चात, और वो कौन सा है क्षारक्षमिक और क्षारक्षमिक। तिर्यंच में तिर्यंचों के पर्याप्त में ही औक्षमिक होता है क्योंकि औक्षमिक के साथ कोई वहाँ उत्पन्न नहीं होता है। क्षायिक और क्षाक्षमिक पर्याप्त अपर्याप्त, यानी इतने डिटेल में उन्होंने सभी ले लिए। तिर्यंच नहीं के क्षायिक नहीं है, औक्षमिक और वेदक हो सकते हैं क्योंकि वहां जाने के बाद उत्पन्न हुआ है। औक्षमिक क्षाक्षमिक पर्याप्त के ही है, यानी तिर्यंच ही में अपर्याप्त में नहीं है क्योंकि तिर्यंचों में सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न होने वाला पुरुष में उत्पन्न होगा, तो तिर्यंचों में तो स्वीकार किया अपर्याप्त में, परंतु तिर्यंच नी में नहीं लिया क्योंकि स्त्री पर्याय में कोई उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए पर्याप्त होने के बाद उनको सम्यक्त हो सकता है। मनुष्य गति में पर्याप्त अपर्याप्त के क्षायिक और क्षाक्षमिक है, और औक्षमिक है वो पर्याप्त के ही है। देवगति में औक्षमिक अपर्याप्त में होगा क्या नहीं होगा, अभी तो हमने किया ना, क्योंकि वो मरकर द्वितीयोक्षम के साथ देखा जा सकता है। तो मनुष्य में क्षायिक क्षम औक्षमिक पर्याप्त ही के हैं, बहुरी मनुष्य ही के तीनों ही हैं। मनुष्य नहीं कहा,
मनुष्य नहीं यानी स्त्री बनने वाला नहीं लेना, मनुष्य को
भाव ऐसे, तो उसमें भी क्षायिक होगा औक्षमिक होगा वेदक होगा, वो तो पर्याप्त ही के अपर्याप्त ही के, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ मनुष्य नहीं कोई नहीं होगा, भाव से भी वो पुरुष में।
एक एक सेकंड फिर से पहले पढ़े हैं,
मनुष्य नहीं के तीनों ही सम्यक्त्व पाए जाते
हैं, या मनुष्य नहीं यानी
हाँ उसे स्त्री वेद,
ये लेना है कि मनुष्य नहीं यानी मनुष्यों को ऐसा नहीं लेना,
भाव से
फिर से पढ़ना पहला।
वो मनुष्य नहीं अनेक वचन में न, न, नल वाला न लगा और ये बाण वाला न मनुष्य नहीं,
तो मैंने गलत बताया।
अपर्याप्त में मनुष्य नहीं यानी भाव से स्त्री वाला मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व नहीं है क्योंकि सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न होता है मनुष्य में को पुरुष वेद से, परंतु ये जीव बाद में औक्षमिक भी प्राप्त कर सकते हैं वेदक भी और क्षायिक भी।
अच्छा यहाँ पर स्त्री पर्याय का जीव जो है यानी उसको क्षायिक होता है कि नहीं, इसके बारे में कुछ
नहीं बात नहीं,
वो अपने को
यहाँ लिखा है यहाँ के क्षायिक समय तो भाव वेद करेगी है, यानी जो मनुष्य में जो क्षायिक समय तो कहा है वो भाव वेद की अपेक्षा मनुष्य में ही है, द्रव्य वेद की अपेक्षा नहीं है, ये यहाँ लिखा है और उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। देवगति में पर्याप्त अपर्याप्त में तीनों ही समय वेदक भी होता है क्षायिक भी होता है और द्वितीय औक्षम वाला औक्षमिक भी है। प्रथम औक्षम अपर्याप्त दशा में किसी को भी नहीं होगा क्योंकि प्रथम औक्षम में मरण नहीं है। और फिर पौनत्रिक में अपर्याप्त अवस्था में किसी को समय को नहीं होगा और किसी भी देवांगना को नहीं होगा, भले वो कल्पवासिनी देवियां हो परंतु स्त्री पर्याय है तो वहां जन्म से किसी को भी समय को नहीं होगा। अब ये तो मैंने आपको गति की अपेक्षा और वो भी इतना डिटेल करके बताया, यहाँ तो इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा बताएंगे, हाँ वो सब में बताया। इंद्रिय अनुवाद करी संगी पंचेन्द्रिय जीवनी के तीनों ही है, तीनों सम्यक्त है, अन्य के नहीं। काय के काय मार्गना के अनुसार अभी उसको होगा, सत्रस काय जीव के तीनों ही अन्य के नहीं। योग अनुवाद करी मन वचन काय तीनों ही योगों के हैं और वो तीनों ही पाए जाते हैं। अयोगिनी के अयोग केवली के योग मार्गना की अपेक्षा अयोग केवली के कौन सा शायद वाला योग वेद मार्गना की अपेक्षा तीनों ही वेद वालों के तीनों ही समय को कहा जाता है। वेद रहित के यानी अपगत वेदी के औषम भी है ना कषाय मार्गना की अपेक्षा क्रोध मान माया लोग चारों कषाय वाले के तीनों ही समय कषाय रहित यानी अकषाय यानी कहाँ का हुआ औषमी कक्षायित है ज्ञान मार्गना की अपेक्षा मति आदि पांचों ही ज्ञान वाले के सामान्य करी तीनों ही यानी सम्यक ज्ञान लिया है मति शुद्ध अवधि मना करी केवल वाले तो सामान्य से कहेंगे केवल यानी के तो क्षायित किया संयम के मार्गना से यानी अनुवाद करिए ने मार्गना की अपेक्षा से सामायिक छेदोपस्थापना संयम नी के तीनों ही परिहार विशुद्धि वाले के औषमिक नहीं है औषमिक नहीं था ना द्वितीय औषम ना प्रथम औषम तो क्षायिक और सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयमिक औषमिक और क्षायिक क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय संयम दसवें में है और ये यथाख्यात ग्यारहवें बार में आगे भी है संयता संयत के और असंयत के तीनों ही समय को अब दर्शन मार्गना की अपेक्षा चक्षु और अवधि दर्शन वाले के तीनों में क्योंकि वो तीनों ही कार्य केवल दर्शन वाले के साहिक समय लेशा के अनुवाद करी छह लेशा वालों के तीनों हो क्योंकि चौथे गुणस्थान तक तो छह लेशा होते तो वहाँ तीनों ही प्रकार के समय को पाए जाते हैं लेशा रहित वाले को क्या होगा भव्य अनुवाद करी भव्य के तीनों ही अभव्य के कौन सा होगा अभव्य के नहीं है सम्यक के अनुवाद करी जहाँ जो समय दर्शन तहाँ सोई जाने क्योंकि सम्यक तो मार्गणा है तो उसके भेद में उपशम सम्यक वाले को उपशम सम्यक होगा क्षायिक वाले को क्षायिक होगा वेदक वाले को वेदक होगा और बाकी नीचे के तीन वालों को होगा ही नहीं संगी के यानी संगी मार्गना की अपेक्षा संगी के तीनों ही है असंगी के तो है ही नहीं सम्यक पर दोनों से जो रहित है जो संगी असंगी से रहित है उसको कौन सा सम्यक होगा कौन है वो संगी असंगी से रहित आहारक के अनुवाद से यानी आहारक और अनाहारक की अपेक्षा बात चल रही है आहार गिने के तीनों है और अनाहारक में तीनों है द्वितीय ऑप्शन होगा ना अनाहारक के छद्मस्थ के तीनों क्योंकि अनाहारक और कहाँ होता है तेरहवे में भी होता है तीन समय के लिए और चौदहवे में भी होता है तो वहाँ तो क्षायिक है केवली समुदाय सहित के क्षायिक है ऐसे चौदह मार्गना वेद करी सम्यक दर्शन का स्वामित्व कहा ये निर्देश पहले बताया था अभी स्वामित्व बताया उसके बाद कौन है साधन तो सम्यक दर्शन काहे करी उपजे है ये साधन में पूछा गया था ना उसका साधन क्या है तो साधन दो प्रकार का है अभ्यंतर और बाह्य अभ्यंतर तो दर्शन मोह कर्म का उपशम क्षय क्षय उपशम ये तीन प्रकार के सम्यक है तो यहाँ तीनों प्रकार की अवस्था बताई बाह्य नारकी जीवों के तीसरी पृथ्वी तक तो किसी जीव के जाति स्मरण है किसी के धर्म का श्रवण है और वहां संबंधी वेदना का दुख चौथी पृथ्वी से लेकर सातवीं तक जाति स्मरण और वेदना का अनुभव
जाति स्मरण में अवधि ज्ञान भी ले सकते,
केवल अवधि ज्ञान नहीं लेना, जाति स्मरण तो स्मृति है, क्योंकि अवधि ज्ञान तो नीचे के नरकों तक जाएंगे तो अवधि का क्षेत्र बहुत कम हो जाता है, और फिर ये पूर्व भोग के अवधि काल की अपेक्षा भी अगर अवधि लेनी है तो उससे जाति स्मरण में ज्यादा कार्यकारी, जाति स्मरण तो ये मति ज्ञान का भेद है। तिर्यचिनी के कोई के जाति स्मरण है, कोई के धर्म श्रवण है, कोई के जिनबिंब का दर्शन है। देखो धर्म श्रवण भी बताया, हमें ऐसा लगता है ना वो कौन सी भाषा में समझते हो, हाँ मुनियों ने दिया, और बाकी समोचरण में तो इतने होते हैं तो यानी वो तो समझते होंगे ना अपनी अपनी भाषा में।
देखो हम पुणे में गए थे, वहाँ एक हमारे पहचान के हमको उन्होंने बुलाया था घर पे, तो वो सुबह उनके घर में घर मंदिर था, उनके घर में दो कुत्ते थे, तो खाली पहले वो उनके ऐसे आदत थी कि शुरू करने के पहले वो ऐसे घंटी बजाते थे, तो घंटी बजाए तो उस दोनों में से एक कुत्ता आके वहाँ बिल्कुल रोज बैठता ही था मंदिर में आके। हम तो घर में मन कुत्ता नहीं रखते हैं, लेकिन वो कुत्ता मंदिर में आके बैठता था, पूरा पूजा होने के बाद वो निकल जाता था, ऐसा वो उसके उनके बारे में कहते हैं। यानी हमें वो करना क्या नहीं करना उसके ऊपर विवेचन नहीं है, लेकिन वो तीरंज गति का जीव होते हुए भी उसको देव के बारे में कुछ न कुछ आस्था होगी या कुछ ऐसा अहोभाव होगा, ये प्रत्यक्ष हमने देखा उसको, मतलब कुत्ते को वहां बैठा हुआ नहीं देखा।
ये तो हमने देखा था जाति स्मरण धर्म का श्रवण, ये तीरंज की बात चल रही थी, जाति स्मरण धर्म श्रवण और जिनबिंब का दर्शन। ये जिनबिंब का दर्शन में आपको याद है श्रवण बेलगोला कल महावसा का अभिषेक चल रहा था, तो वहां इसे ऊपर जो बैठने के लिए तो उसके पीछे बड़े बड़े बंदर आके बैठे, और जैसे हम अभिषेक देख रहे थे वो मूर्ति को देख रहे थे, तो वो भी इतने एकाग्र दृश्य को देख रहा था, मेरा देखो ये भी कितना ऐसे आश्चर्य करके देखते, और उनके लिए तो वो रोज ही देखते होंगे ना, हम तो कभी कभी करते 14 साल में एक बार।
नहीं पर रोज थोड़ी मस्तक अभिषेक होता है,
मस्तक परंतु मूर्ति को देख रहे ना उनके, तो वैसे तो भाव तो होते ही, लेकिन तो उनके भी जिनबिंब का दर्शन बताया। मनुष्य के भी वैसे ही है, वैसे नहीं जाति स्मरण धर्म श्रवण और जिनबिंब दर्शन, हाँ पंच कल्याण की भी बात है। देवनी के कोई के जाति स्मरण, कोई के धर्म श्रवण, कोई के तीर्थंकर केवली का कल्याण आदि की महिमा का दर्शन, कोई के देवनी की रिद्धि का देखना है। तो देवों की रिद्धि से जो होता है वो तो कहाँ तक है, सहस्रार तक होता है। आनंद प्राण कारण अच्युत में देवरुद्धि दर्शन बिना अन्य तीन कारण। नव ग्रेविक में तो कई के जाति स्मरण है, कई के धर्म श्रवण, वहां तो सारे अयम इंद्र ही है, सबको तो इक्वल है। अनुदिश अनुत्तर विमान वासी के यह कल्पना नहीं है, वो तो सारे समय दृष्टि, उनके समित्व का कारण क्या कहेंगे, जहाँ समय दर्शन वाले ही उपजे है। ये तो हो गया साधन, अभी अधिकरण, समय दर्शन का अधिकरण क्या है, तो कहते अधिकरण भी दो प्रकार, बाह्य और अभ्यंतर। वहाँ अभ्यंतर तो स्व स्वामी संबंध के योग्य आत्मा ही है, उसका अधिकरण आधार क्या है, तो आत्मा में ही वो उत्पन्न होता है, क्योंकि ये जो कारक की प्रवृत्ति है वो विवक्षा भेद से वो कारक लगाते हैं हम उसमें। बाह्य अधिकरण एक राजू चौड़ी 14 राजू ऊंची लोक नाड़ी, तृष्णा नाली इसको कहेंगे, क्योंकि संगी पंथी नहीं उसी में पाए जाते हैं, तो उसी में उनको सम्यक होगा, समय दर्शन तृष्णा नाली ही में पाया जाता है। समय दर्शन की स्थिति कितनी है ऐसे पूछने पर कहते हैं औषमिक की जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुख, शायिक की संसारी जीव के तो अंतर्मुख है जगन्य अंतर्मुख, संसार की अपेक्षा। वैसे तो क्षायिक समय दर्शन साधी अनंत काल वाला है, परंतु क्षय होने पर संसार में कितने काल तक रह सकता है? मिनिमम एक अंतर्मुख क्षय प्राप्त करेगा, श्रेणी चढ़ेगा और मुख चला जाएगा अंतर्मुख। उत्कृष्ट 33 सागर और अंतर्मुख अधिक 8 वर्ष घाटी 2 कोटि पूर्व, ये तो हमने देखा था उससे पहले। पूर्व कोटि में 8 वर्ष के बाद क्षय समय तो प्राप्त किया, क्षय समय जैसे रहा तो रिमेनिंग वो 33 सागर में मुनि होकर वहां जन्मे, वहां से पूर्व कोटि में जन्म लिया। क्षय तो कैलाश तक चलता है। ये तो स्थिति बताई उन्होंने। और मुक्त जीव के साधे अनंत काल, शौक्षमिक की जगन्य अंतर्मुख और उत्कृष्ट 132 नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बीच में समय तो नहीं रहता। समय दर्शन कितने प्रकार के हैं? तो सामान्य से एक प्रकार और निसर्ग जो अधिगमज भय से दो प्रकार का, औक्षमिक क्षायक्षमिक भय से तीन प्रकार का। शब्द से तो संख्या भेद है और अर्थ से असंख्या तथा अनंत भेद है। हमने उस दिन वो 10 भेद भी देखे थे, 10
वो संख्या में आए।
ते श्रद्धाता श्रद्धान करने योग्य वस्तु के भेद तय जानने, ये जो असंख्यात और अनंत भेद बताए हैं, श्रद्धाता इन्हें श्रद्धान करने वाले, जैसे हम ज्ञाता और ज्ञेय कहते हैं ना, इसे श्रद्धाता श्रद्धा करने वाला और श्रद्धा करने योग्य वस्तु, इसके भेद से ही अनेक प्रकार के भेद पाए जाते हैं। यह तो विधान अनेक प्रकार बताया। ऐसे निर्देशादिक की विधि ज्ञान चारित्र विषय, यानी यह समय दर्शन पर घटित किया, ज्ञान पर लगाओ, चारित्र पर लगाओ, जीवादि सात तत्वों पर लगाओ, ये कहते हैं जो हमें विषय जानना है उसमें सब पर लगा, कि पदार्थों में आगम के अनुसार लगाव नहीं, यानी लगाना चाहिए।
सत संख्या वाला है
हाँ। उसके भी देखते हैं। सत्संख्या उसके बाद आपको पढ़ना। देखो सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर अल्प भाव और अल्प भूतवेश्च, इस पर भी अभी घटित करें इसका अर्थ। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प भूतव, इन आठ अनुयोगों द्वारा भी जीवादिक पदार्थों का अधिगम होता है। मैं इसका ट्रांसलेशन करके पढ़ रही हूँ। वहाँ सत ऐसा अस्तित्व का निर्देश है, वहाँ निर्देश में क्या लिखा था उसकी परिभाषा, यानी समय दर्शन क्या है उसको लिखा था। यहाँ तो सम्यक्त्व के अस्तित्व का निर्देश कर रहे, यानी कथन कर रहे। सच शब्द प्रशंसादी वाची भी है, वह यहाँ नहीं लेना। यहाँ तो अस्तित्व को बताना यही सत है। संख्या भेदों की गणना है। क्षेत्र निवास को कहते हैं, वह वर्तमान काल का निवास है उसको लेंगे। और स्पर्शन त्रिकाल गोचर, त्रिकालवर्ती समय दृष्टि जीव कहाँ कहाँ थे तो त्रिकालवर्ती लेना। काल निश्चय व्यवहार से दो प्रकार का है, उसका निर्णय आगे बताएंगे। अंतर विरह काल को कहते भाव, औक्षणिक आदि भाव है उसको भाव कहना है। और अल्पभूत परस्पर अपेक्षा से जो थोड़ा या अधिक जो होता है उसका कथन कहो, उसका ज्ञान है उसको अल्पबोध कहते हैं। यानी इस आठ अनियोगों के द्वारा समय दर्शन आदि या जीवादि पदार्थों का अधिगम होता है, ज्ञान होता है। अब कहते हैं कि पहले सूत्र में निर्देश बताया था, उसी से सब ग्रहण हो जाता है और विधान ग्रहण से संख्या की प्राप्ति होती है, अधिकरण से क्षेत्र और स्पर्शन का ज्ञान हो जाता है, स्थिति में से काल का ग्रहण होता है और भाव का ग्रहण नामादि निक्षेप में हो जाता है। तो फिर यहाँ सूत्र में ये क्यों बताया क्यों दोबारा, उसका समाधान यह तो सत्य है। पहले सूत्र से सिद्ध तो होता है, परंतु तत्वार्थ का उपदेश भेद के द्वारा करने में आता है। वो शिष्य के आशय से है, यानी सामने वाले शिष्य के अनुसार उसका उपदेश दिया जाता है। तो कई कितने ही शिष्य तो संक्षेप रुचि वाले होते हैं, थोड़े में बहुत समझ जाते हैं, और कितने ही शिष्य विस्तार रुचि वाले होते हैं, बहुत कहने पर समझते हैं। कोई मध्यम रुचि वाले होते हैं तो थोड़ा बहुत कहने से समझ लेते हैं, और बहुत विस्तार किए भी नहीं समझे।
क्या
वही तो विस्तार करने पर भी नहीं समझते। बहुरी सत्पुरुषों के तो कहने का प्रयास है, वह सभी प्राणी के उपकार के लिए, ये हमें जो समझाते हैं तो वो तो सभी उन लोगों को सबको समझाना चाहते हैं, केवल संक्षेप रुचि वालों को नहीं। थोड़ा बहुत कह दिया ये समझे तो समझे, नहीं तो जाने, तो ऐसा नहीं है। इसलिए ये अधिगम का जो उपाय है, इतने वेद कर करके समझाए। निर्देश स्वामी को वगैरह तो बता ही बताया, और ये सत्संख्या के भी बता दिया। और ऐसा अगर नहीं कहना था तो प्रमाण नहीं इतने बता देते, फिर ये दोनों ही सूत्र बेकार के थे। तो दोनों जो बताए हैं वो अधिक विस्तार से जानने वालों के लिए बता दिए। अब इसके जो 14 गुणस्थान बताए हैं कि ये जो सत आदि जो अनुयोग बताए हैं, ये 14 गुणस्थानों में व्यवस्थित है। तो पहले 14 गुणस्थानों के नाम यहाँ लिखे जो हमें सबको याद है। 14 मार्गणा स्थान भी बताए जो अभी अभी हमने गिना है। अब ये जो सत प्ररूपणा है वो दो प्रकार की है, सामान्य और विशेष। इसका अर्थ समझ में आया होगा, सामान्य ने गुणस्थानों में बताए, विशेष ने मार्गणा में बताए। यानी सामान्य में तो गुणस्थानों में बताएंगे और विशेष मार्गणा में। जैसे अभी सम्यक्त को बताना है तो उसके गुणस्थान बताएंगे, और कौन कौन से मार्गणा में होते वो बताएंगे। यानी अभी ये सत जो बताना है, यहाँ तो कहते हैं गुणस्थानों में सत कौन कौन है वो बताए। तो कौन कौन से गुणस्थान सत है, तो यहाँ लिखते हैं, देखो, मिथ्या दृष्टि सत रूप है, शासादन समय दृष्टि सत स्वरूप है, कहते ऐसे 14 गुणस्थान सत स्वरूप। विशेष के बताना है, विशेष से गति के अनुवाद से नर गति में सभी पृथ्वियों में आदि के 4 गुणस्थान, तिरंज में आदि के संयोग सात ऐसे 5 है, मनुष्य में 14 और देव में 4। अभी इंद्रिय के अनुवाद से यानी इंद्रिय मार्गणा के द्वारा एक इंद्रिय से लेकर चतुर इंद्रिय तक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान ही है, पंच इंद्रिय में 14 ही है। काय मार्गणा की अपेक्षा स्थावर काय में तो मिथ्या दृष्टि है, और त्रस में तो 14 ही। योग मार्गणा की अपेक्षा मन वचन काय तीनों योग में 13 गुणस्थान, 14वें में कौन सा योग है, क्योंकि आगे 14वां आयोग केवली में योग नहीं। वेद मार्गणा की अपेक्षा तीनों वेद में मिथ्या दृष्टि से लेकर 9 गुणस्थान, वेद रहित में ये 9वें के जो रिमेनिंग अवैध भाग है वहां से लेकर अयोग केवली तक 6 गुणस्थान। अभी उसमें तो अनिवृत्ति बादल साम्राज्य के 6 भाग किए, वहाँ 3 भाग आदि के में वेद है, अंत के 3 भाग वेद रहित है। अभी उन्होंने वो तो क्षय की अपेक्षा बताई होगी शायद। कषाय मार्गणा में देखते हैं, क्रोध मान माया में तो मिथ्यात्व से लेकर 9वां गुणस्थान, और लोभ में पहले से 10वें। कषाय रहित में 11वें से लेकर 14वें तक। ज्ञान मार्गणा के अनुसार मति अज्ञान शुद्ध अज्ञान ये मिथ्या ज्ञान की बात कर रही है, और विभंग ज्ञान, इनमें गुणस्थान पहले दो मिथ्यात्व और साक्षात्व, और मति शुद्ध अवधि इनमें 4वें से लेकर 12वें तक, मन परे में ये तो कभी बात अपनी हुई छह से बारह और केवल ज्ञान में तेरवा चौदह। संयम के अपेक्षा संयम ही कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक? छठे से अयोगी तक, चौदवे तक। सामायिक छेदों पर स्थापना छठे से नौवे तक। परिहार विशुद्धि छठे सात। सूक्ष्म संप्राय दसवे में। यथार्थ क्या ग्यारह से चौदह। संयता संयत पांचवे में और असंयत पहले चार गुण से। दर्शन मार्गणा से चक्षु अचक्षु दर्शन में पहले गुण स्थान से बारहवें गुण स्थान। अवधि दर्शन में चौथे। जब अवधि दर्शन है ना वो तो सम्यक तो यानी अवधि ज्ञान के साथ लगाना, विभंग के साथ नहीं लेना। तो चार से बारह और केवल दर्शन तेरह चौदह। लेशा में कृष्ण नील कपोत लेशा में एक से चार। तेज और पद्म लेशा एक से सात और शुक्ल एक से मिथ्या दृष्टि को भी होती है ना शुक्ल। नवे ग्रहवे जाने वाला हमने देखा था बहुत बार। लेशा रहित अयोग के लिए भव्य मार्गणा की अपेक्षा भव्यों के गुणस्थान एक से चौदह, अभव्यों का एक। सम्यक तो मार्गणा से शायिक सम्यक तो के गुणस्थान चार से चौदह। शौक श्रमिक में चार से सात। औपश्रमिक में चार से ग्यारह। और सासाधन समय दृष्टि वो तो अपने अपने गुणस्थान मिथ्या दृष्टि और समय मिथ्या अपना अपना गुणस्थान। संगी मार्गणा से संगी में एक से बारह। असंगी के और उन दोनों से रहित सहयोग आयोग। आहार मार्गणा के अनुसार आहारक में एक से तेरह। अनाहारक में विग्रह गति में एक दो और चार तेरह और चौदह।
विग्रह गति पूछा ना आपने?
नहीं नहीं, विग्रह गति की अपेक्षा पहला दूसरा चौथा और मात्र अनाहारक लेना है तो केवली को भी लेना और चौदह। तो ये तो सत की प्ररूपना हुई। ये सब की आपको सर्वासिद्धि पढ़ना अच्छा है। और ये सब विषय अपना हुआ है क्योंकि हमने तो ये तो प्ररूपणाएं हुई है जीवकांड में भी हो गई है तो ये लगाना वैसे आसान है, यानी केवल सुनने से जमलिंग तो नहीं होगा। आगे पढ़ना है ना? अच्छा अब संख्या प्ररूपणा बता। सो भेद के गणना करने को संख्या कहेंगे। वो दो प्रकार से सामान्य से गुणस्थान में और विशेष में मार्गणा में। तो कहते मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या तो गुणस्थान से लेना मिथ्या दृष्टि यानी क्योंकि प्रत्येक गुणस्थान की संख्या बता। मिथ्या दृष्टि कितने हैं तो अनंत अनंत। सासाधन समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि और असंय समय दृष्टि और संयता संयत ये सब असंख्या थे पल्ले के असंख्या थे यथायोग्य कम ज्यादा है परंतु उसकी संख्या। प्रमत्त संयत पृथक्व कोडी कहें कुछ करो यानी यहाँ पृथक्व ऐसे आगम में संज्ञा है। सो तीन से ऊपर और नौ से नीचे जाना कहीं कहीं ये लागू होता कहीं अधिक के लिए भी आता है।
यानी तीन से नौ के बीच में होगा तो पृथक शब्द वापरा जाता है कहीं पर वो उसका अर्थ वैसा नहीं होता
तो भी मोर वो भी बताते हैं। तो पांच करोड़ तिरानवे लाख अट्ठानवे हजार दो सौ छह। अप्रमत्त संयत वो तो प्रमत्त संयत से उनसे आधी है तो वहाँ दो करोड़ छियानवे लाख निन्यानवे हजार एक सौ तीन है। उपशम श्रेणी वाले प्रवेश किसे तो एक अथवा दो अथवा तीन उत्कृष्ट से चौवन उपशम श्रेणी श्रेणी की बात श्रेणी में गुणस्थान केवल बताना चौवन अधिक से एट ए टाइम प्रवेश कितने कर सकते उसके बाद
टोटल नहीं
इनका सर्वकाल के भेजे हुए तब संख्या है यानी किसी एक गुणस्थान में कितने हैं तो संख्या के एक गुणस्थान के 299 एक ही गुणस्थान उपशम श्रेणी के एक एक गुणस्थान में अधिक से अधिक कितने हो सकते तो 299 हो सकते और चारों को जोड़ेंगे चारों गुणस्थान ने 8, 9, 10, 11 तो 1196 हो चार क्षपक श्रेणी वाले और अयोग के प्रवेश की अपेक्षा 1, 2, 3 उत्कृष्ट 108 तक है उनसे डबल है और अपने अपने काल के इकट्ठे हो तो संख्यात होते हैं तो एक गुणस्थान में कितने होते हैं 598 जो 608 कहते हैं ना ये दूसरी एक अपेक्षा बताते पांचों गुणस्थान को जोड़ेंगे तो 2990 संयोग के विधि में प्रवेश की अपेक्षा 1, 2, 4 अधिक से अधिक 108 और सभी इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि वो तो संचय की अपेक्षा जिसको हम कहेंगे तो पृथक्व लाख है पृथक्व ने 8,98,502 मैक्सिमम संख्या संयोग के विधि
गुरुदेव कहते थे ना लाखों केवड़ी है ना तीर्थंकर के समोचरण में लाखों केवड़ी हुई छे तो ये रेफरेंस मिलता है
इनसे छठे से लेकर अयोग केवड़ी तक टोटल कितने बताए
9 करोड़
3 कम 9 करोड़ पहले 8 लिखना लास्ट में 7 लिखना और बीच में 6 बार 9 लिखना अब ये तो सामान्य से हुआ यानी प्रत्येक गुणस्थान वाले की संख्या बताएंगे अब विशेष में बताएंगे अन्य लक्ष्य आने वाले तो नरक गति में पहले पृथ्वी में यानी पहले नरक के नारकी जो है वो मिथ्या दृष्टि जीव असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण जगत श्रेणी को असंख्यात गुणा करो इतने
मिथ्या दृष्टि
जगत श्रेणी किसको समझते सिंगल सिंगल लाइन 7 राज्यों में जितने प्रदेश है उतने
श्रेणी श्रेणी यानी लाइन
प्रथम में श्रेणी सिंगल लाइन लीनियर जिसको हम कहते हैं प्रथम में 7 राज्यों गुना 7 राज्यों यहाँ तो मात्र 7 राज्यों में जो प्रदेश गिनो कितने होते
जितने प्रदेश
उसने जीव
पहले
नरक
में पहले नरक
संख्या जगत श्रेणी
असंख्या यानी जगत श्रेणी मल्टीप्लाइड बाय असंख्या दूसरी पद्धति से बताना है तो जगत प्रतर का असंख्या का भाग देखो जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणा करेंगे तो जगत प्रतर परंतु जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से छोटे असंख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पहले नरक के नारकी की संख्या जगत श्रेणी मल्टीप्लाइड बाय असंख्या उसको असंख्या जगत श्रेणी कहेंगे जैसे हम असंख्यात लोग किसको कहते हैं लोग को असंख्या एक लोग दो लोग तीन लोग असंख्या पर ये जो संख्या है वो जगत प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण है
जगत श्रेणी आपने बताया 14 राज्यों
7 राज्यों को जगत श्रेणी कहते हैं देखो ये कितने प्रदेश सूक्ष्म होते हैं हमने देखा था अंगुल अंगुल के असंख्यात भाग को अगर हम संख्या में करेंगे 1, 2, 3, 4 समयों में तो उसमें तो असंख्या था संख्या था उसे फिर चल जाए यानी वो कितनी संख्या होगी तो ये असंख्यात जगत श्रेणी ये अंगुल कहाँ अंगुल का असंख्यात भाग कहाँ और वो जगत श्रेणी को असंख्यात गुणा कहाँ तो पहले नरक में कितने नारकी हो गए
उससे देर ज्यादा है माने डरो
इतने जीव वहाँ पर है
बना असंख्यात है
एक एक नरक के लिए असंख्यात योजनों के होते हैं और वहाँ कितने असंख्यात नारक
टोटल जीव अनंत है तो उसके सामने
और यहाँ तो सारे पंचेंद्रिय है ना ये तो
नीचे नीचे कम हो जाते हैं
अन्य तो कितने
ये पहले पृथ्वी के
हाँ नीचे कम होते
अच्छा नीचे
नीचे दूसरे से सातवें की टोटल करेंगे तो उनसे भी असंख्यात गुने पहले में देखो दूसरे ये केवल मिथ्या दृष्टि लिए वहाँ के समय दृष्टि भी वहाँ असंख्यात
वो कौन सा असंख्या पल्ले का संख्या
हाँ पल्ले का संख्या दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं तक मिथ्या दृष्टि श्रेणी के असंख्या पे बात यहाँ असंख्या जगत श्रेणी है और वहाँ श्रेणी का असंख्या
सब मिलकर दो से लेकर सात तक
नहीं अलग अलग
प्रत्येक
सो असंख्यात का भाग असंख्यात कोड़ी योजन के प्रदेश को उतने जानने असंख्यात का भाग वो कितना है असंख्यात कोड़ी योजन के जितने प्रदेश है उतने जानने श्रेणी का असंख्यात का भाग कहा तो असंख्यात का भाग जो बताया है वो प्रमाण वो कितना होता है तो असंख्यात करोड़ योजन के जितने प्रदेश है उतने और सभी पृथ्वियों में सासादन और मिश्र और असंयत पल्ल के असंख्यात तिर्यंच गति में तिर्यंच जीव मिथ्या दृष्टि कितने अनंत अनंत क्योंकि एक निगोच शरीर में ही अनंत है तो सारे तिर्यंच हो गए अनंत अनंत सासादन आदि संहिता संयत तक पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है मनुष्य में मनुष्य मिथ्या दृष्टि श्रेणी के असंख्यात विभाग है क्योंकि मनुष्य मिथ्या दृष्टि कहेंगे तो अपर्याप्त भी आ जाए लब्धि अपर्याप्त इसलिए असंख्यात गठित होते सो असंख्यात विभाग असंख्यात कोड़ी योजन के प्रदेश मात्र जानना
असंख्यात
यहाँ लिखा ना असंख्यात करोड़ योजन
वो जो नौ प्रकार जो
श्रेणी का असंख्यात हो
वो जो असंख्यात के नौ प्रकार बताए उसमें कौन सा वो असंख्यात असंख्यात वो देना या जगन्य असंख्यात देना ऐसा कुछ है
देखो जो आपको मालूम है ना वो युक्ता संख्यात वगैरह तो वो तो आवली का प्रकार
तो
आवली के आगे असंख्यात स्थान पर जाने पर पल्ले होता है और जितने स्थान जाकर पल्ले होता है उसके स्थान आगे जाएंगे तो अंगुल होता है यानी अंगुल का वो भेद है वो भी असंख्यात असंख्यात वाला होगा उसके अंगुल के आगे कितने स्थान जाएंगे तो जगत श्रेणी आ जाएगी जगत श्रेणी वैसे तो उस धारा में नहीं है ना नीचे की धारा में
यहाँ जो लेना असंख्यात
बहुत ऊपर तो असंख्यात मनुष्य में श्रेणी के असंख्यात विभाग टोटल ये ना पर्याप्त को लेकर और सासादन से लेकर संहिता संयत तक संख्यात है तो सासादन में 52 करोड़ है मिश्र में 104 करोड़ है
मनुष्य क्या
मनुष्य में असंयत में 700 करोड़ है और संहिता संयत में 13 करोड़ है यानी पांचवे में 13 करोड़ दूसरे में 52 तीसरे में 104 और चौथे में 700 करोड़ प्रमत्त संयत आदि की संख्या भी ऊपर बताई थी देवगति में मिथ्या दृष्टि असंख्यात श्रेणी प्रमाण है वो सभी देव मिलकर का सो प्रतर के असंख्यात विभाग है और सासादन मिश्र और असंयत पल्ले के असंख्यात विभाग है
सभी देवों को
नहीं नहीं सभी
सभी यानी देव कम है नारकी जास्ती है
देव तो एक ही बताया ना माने यहाँ ना 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 नारकी माँ पिल्ली माँ अलग बताए बोले बीजी तो कुछ अलग बताए
देव ज्यादा है
देव ज्यादा
टोटल देवों की बात नहीं है यहाँ पर, मिथ्या दृष्टि की संख्या गिनी है।
तो वहाँ पर भी मिथ्या दृष्टि की संख्या,
मिथ्या दृष्टि की वहाँ पर भी देखी थी, यहाँ पर भी
आपने जो पहले नरक में बताया उतनी पूरी देवों की।
देखो असंख्या श्रेणी दोनों जगह नहीं, ये तो सामान्य कथन, वो असंख्यात का प्रमाण कितना कम है वो यहाँ नहीं बताया।
नहीं पर अभी तो हम केवल मिथ्या दृष्टि की बात देख रहे हैं, सम्यक दृष्टि देव जस्ती होंगे, ओवरऑल देव की बात कर रहे हैं।
वो सबके लिए वहाँ सामान्य कथन वही होगा, और यहाँ भी मिथ्या दृष्टि के लिए सामान्य ही कथन
है। प्रश्न सॉल्व नहीं होता है कि नारकी के नारकी जीव अधिक है या सम देवगति के देव जीव अधिक है, अभी बताएं इसमें लिखा हुआ है तो बताएं।
हमने देखा ना देवकी कितने होते हैं, वो तो जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय, तो कहते हैं सब प्रतर के असंख्या भाग है। वो वहां पर भी वैसा ही कहा था पहले नरक के लिए, सासाधन मिश्रा और उत्पल्य के असंख्या हो गया था, अभी इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा बता रहे। एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि अनंत अनंत है, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय असंख्या श्रेणी प्रमाण है, इन्हें असंख्या होते सौ प्रतर के असंख्या के भाग है। पंचेन्द्रिय में मिथ्या दृष्टि असंख्या श्रेणी प्रमाण है, सौ प्रतर के असंख्या के भाग है। सासाधन और आयोग तक तो गुणस्थान संख्या बताई थी, वैसे काय मार्गणा में पृथ्वी का एक अप का एक तेजस का एक वायु का एक असंख्यात लोक है, वनस्पति का एक अनंत अनंत क्योंकि निगोद उसमें आते हैं, त्रस का एक पंचेन्द्रियवत वो असंख्या श्रेणी प्रमाण। योग अनुवाद से मनोयोग वचन योग मिथ्या दृष्टि असंख्या श्रेणी प्रमाण, क्योंकि मनोयोग वचन योग वाले हो तो त्रस है इंद्रिया भी है, प्रतर के असंख्या के भाग है। काय योगों में मिथ्या दृष्टि अनंतानंद है, और तीनों योग वाले अभी जो सासाधन आदि तो अपने अपने जो गुणस्थानों की संख्या बताई उतनी। वेद मार्गणा से स्त्री वेद पुरुष वेद वाले मिथ्या दृष्टि असंख्या जगत श्रेणी, क्योंकि वो तो पंचेन्द्रिय है, प्रतर के असंख्या के भाग है। नपुसक वेदी कितने हैं, अनंतानंद, फिर वो गुण स्थानों के अनुसार भी उनकी संख्या बताई। अब कषाय मार्गणा के अनुसार तो गुणस्थान के अनुसार उनकी संख्या बताई, यानी प्रमत्त संयत वगैरह ऊपर तो संख्या दी। ज्ञान मार्गणा के अनुसार फिर उन्होंने मतिश्रुत वाले वो फिर बताई, यानी मिथ्या दृष्टि के और फिर बाकी सम्यक दृष्टि वगैरह। संयम मार्गणा के अनुसार सामायिक छेदोपस्थान वो तो संख्या संख्या हो जाएगी, अभी गुण स्थानों में जो संख्या बताई वैसे शायिक की उसकी बात नहीं है, या सम्यक तो कौन सा है उसकी बात नहीं चलती। संयम में जीवों की संख्या बता रहे परिहार
असंयम में अनंत
हाँ, वो बाकी सभी जो गुणस्थानों की संख्या बताई वही जो घटित होगी, जो जो संयम जहाँ जो लिखा है ना यहाँ पर देखो, परिहार विशुद्धि संयत प्रमत्त अप्रमत्त संख्या, क्योंकि वो सभी तो परिहार विशुद्धि वाले नहीं है, थोड़े हैं, फिर भी उसकी संख्या बताई। सूक्ष्म सांप्रय संयत यथाख्यार संयता संयत असंयत की गुणस्थान व संयत, असंयत में तो असंयत में तो मिथ्या दृष्टि सूक्ष्म सांप्राय में और गुणस्थान वत जो बता चुके थे उन्होंने, सूक्ष्म सांप्राय कहने से उक्षम श्रेणी वाले भी हो गए क्षपक श्रेणी वाले भी हो गए, तो मैक्सिमम संख्या बताएंगे वहां पर। दर्शन मार्गणा से चक्षु दर्शन वाले मिथ्या दृष्टि असंख्या श्रेणी प्रमाण, क्योंकि चतुरिंद्रिय पंचदेव वो प्रतर के असंख्या के भाग, अचक्षु दर्शन वाले मिथ्या दृष्टि अनंत अनंत है, और दोनों के सासाधन और बारहवें तक के सामान्य गुण स्थान में बताए। वैसे अवधि दर्शन वाले अवधि ज्ञानी प्रमाण है, केवल दर्शन वाले केवल ज्ञानी वाले। अब लेशा मार्गणा की अपेक्षा कृष्ण नील कपोत लेशा वाले मिथ्या दृष्टि आदि असंयत तक तो गुणस्थान प्रमाण ये पहले में अनंत दूसरे में असंख्यात वगैरह पीत पद्म लेशा वाले मिथ्या दृष्टि संयता संयत तक तो स्त्री वेद प्रमाण यानी तो असंख्यात प्रमत अप्रमत संयत संख्यात शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टि आदि संयता संयत तक असंख्यात कल्य के असंख्यात शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टि प्रमत्त अप्रमत्त संयत संख्यात है अपूर्वकरण आदि संयोग के विधि तक गुणस्थान वाले अलेशा वाले गुणस्थान के प्रमाण। अब भव्य मार्गणा के अनुसार भव्य में मिथ्या दृष्टि आदि अयोग के विधि तक गुणस्थान प्रमाण उसकी संख्या अभव्य तो अनंत कितने अनंत जगन्युक्तानंद सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा क्षायिक सम्यक्त्व में चौथे गुणस्थान वाले पल्ले के असंख्यात असंयता आदि असंयत से उपशांत कषाय तक मनुष्य संख्यात मनुष्यों की बात है। चार क्षपक श्रेणी वाले संयोग केवली अयोग केवली गुणस्थान प्रमाण है क्षौक्षमिक समय में असंयत समय दृष्टि आदि अप्रमत्त तक गुणस्थान के प्रमाण है औक्षमिक समय में असंयत समय दृष्टि संयता संयत पल्योपम के असंख्यात विभाग प्रमत्ता और अप्रमत्त संख्यात है और चार औक्षमिक गुणस्थान और संख्या है। अभी संगी में मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषाय तक चक्षु दर्शन वत संख्या है इन गुणस्थानों की जो बताई वैसे असंगी में मिथ्या दृष्टि अनंत अनंत है दोनों से रहित तेरहवें चौदहवें गुणस्थान की जो संख्या बताई उतनी है। आहार मार्गणा के अनुसार मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक गुणस्थान वत अनाहारक में मिथ्या दृष्टि सासाधन और असंयत गुणस्थान वत संख्या संयोग केवली संख्यात क्योंकि समुदाय करने वाली अयोग केवली संख्या गुणस्थान प्रमाण है ऐसे संख्या का निर्णय हुआ तो सत और संख्या दो ही हो गए।
बाकी कल देखेंगे कितने आते देखने जावानी के ज्ञान सुधे नो कालो सोवानी मस्तक नमो सदा देव प्रभु अरविंद।